The mortal life of Jesus Christ was filled.
यीशु मसीह का नश्वर जीवन चमत्कारों से भरा हुआ था। एक कुंवारी माँ, एक नया तारा, स्वर्ग दूतों का दिखाई देना, अंधों का देख पाना, लंगड़ों का चलना, गैसेमनी और कर्म में स्वर्ग दूत और सभी चमत्कारों में महान उनका महिमापूर्ण पुनरुत्थान। क्या पहाड़ पर 11 प्रेरितों के उस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं जब पुनः जीवित प्रभु उनके पास आया था और उसने कहा, इसलिए तुम जाओ और सभी राष्ट्रों में शिक्षा दो, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, तुम समस्त विश्व में जाओ और हर प्राणी को सुसमाचार का प्रचार करो। सभी राष्ट्र, समस्त विश्व, हर प्राणी, क्या यह संभव था? यद्यपि यीशु ने उन्हें आश्वासन दिलाया था, फिर भी उन्हें अवश्य संदेह हुआ होगा कि क्या सूत समाचार का प्रचार करने में उनके साथ चमत्कार होंगे। विश्वास ने संदेह को दूर किया और पत्रस ने ऊंची आवाज में कहा, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, कान लगाकर मेरी बातें सुनो। यीशु नासरी, जिसे तुमने पकड़वाया और अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया है और जिसके हम सब गवाह हैं। वह एक अत्यधिक आत्मिक प्रवाह का दिन था और 3,000 लोगों का बपतिस्मा हुआ था, जैसा कि यीशु ने प्रतिज्ञा की थी। चिन्ह और चमत्कार विश्वासियों के विश्वास के साथ हो रहे थे। 183 साल पहले जब यीशु मसीह का गिरजा पृथ्वी पर पुनः स्थापित किया गया था, उसके शिष्यों के छोटे से दल को प्रभु के आदेश के रूप में उसके सदियों पहले बोले शब्दों को दोहराया गया था, चेतावनी की वाणी सभी लोगों के पास जाएगी, क्योंकि सच में यह आवाज आगे बढ़नी चाहिए समस्त विश्व में और पृथ्वी के अंतिम शोर तक भी। सभी लोगों, समस्त विश्व में, पृथ्वी के अंतिम छोर तक, क्या यह संभव था? उद्धारकर्ता ने अपने अंतिम दिनों के संतों को आश्वासन दिया था, लेकिन क्या वे इस कार्य को पहुंच और नैतिक अनुमान ला पाए थे? फिर से विश्वास ने इस संदेह को दूर किया और हजारों का बपतिस्मा हुआ। इंग्लैंड में एल्डर विलफोर्ड वुड्रफ ने पाया, संपूर्ण समाज उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। प्रभु की आत्मा उन पर आई और उन्होंने बेनबो फॉर्म में 45 प्रचारकों और सैकड़ों सदस्यों का बपतिस्मा किया था। हमारा समय भी भिन्न नहीं है। जब एल्डर डेविड ए बेडनार और मैं प्रचारक थे लगभग 40 साल पहले, मैं आपको आश्वासन दिला सकता हूं कि लाल कुर्सियों में बैठे केवल हम ही ऐसे पूरे प्रचारक नहीं, कम से कम 16,000 प्रचारक थे। अब हमारे पास 65,000 हैं, पहले से कहीं ज्यादा। तब 562 स्टेक थे, आज 3,000 से अधिक हैं। उस समय हमारे वार्ड और शाखाएं 59 देशों में थीं। विश्व में आज 224 देशों और प्रांतों में 179 में हमारी कलीसियाएं हैं। हम संख्या में कम हैं, ठीक जैसे नफी ने भविष्यवाणी की थी, लेकिन साथ ही आप और मैं डेनियल की भविष्यवाणी के चश्मदीद गवाह हैं। एक पत्थर काटा बिना हाथों के संपूर्ण पृथ्वी को ढक रहा है। यह उल्लेखनीय चमत्कारों का समय है। 6 महीने पहले जब अध्यक्ष मानसन ने मिशन सेवा पर जाने वाले युवकों और युवतियों की आयु में परिवर्तन की घोषणा की, असंख्य आत्मिक प्रभाव हुआ था। विश्वास ने संदेह को दूर किया और युवक और युवतियां आगे आए। सम्मेलन के बाद गुरुवार को प्रथम अध्यक्षता की प्रचार नियुक्तियों की संस्तुति देने के लिए मुझे नियुक्त किया गया था। मैं 18 वर्ष के युवकों और 19 वर्ष की युवतियों के आवेदनों को देखकर हैरान था, जिन्होंने अपनी योजना समायोजित किया, डॉक्टर से मिले, अपने स्टेक धर्माध्यक्षों और स्टेक अध्यक्षों से साक्षात्कार किए और अपने आवेदन भेजे थे, सब केवल 5 दिनों में। अब हजारों और उनके साथ शामिल हो गए हैं। यह एक चमत्कार है। हम समस्त विश्व के देशों में बढ़ती जा रही अपनी प्रचारक बहनों और सेवा करने के लिए तैयार दंपतियों के स्फूर्तिदायक विश्वास के लिए आभारी हैं। 58 और मिशन की घोषणा की गई है और प्रोवो में हमारे उमड़ते प्रचार प्रशिक्षण केंद्र को आश्चर्यजनक रूप से मेक्सिको शहर में एक नया साथी मिल गया है। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन ने कहा था, हम उद्धारकर्ता के आदेश को अधिक गंभीरता से लेते हैं, तुम जाओ और सभी राष्ट्रों में शिक्षा दो, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। यह कार्य निरंतर आगे बढ़ता जाएगा, जीवन को बदलते आशीषित करते हुए। संपूर्ण विश्व की कोई ताकत परमेश्वर के काम को नहीं रोक सकती। हम प्रभु के चमत्कारों को देख रहे हैं जबकि उसका सुसमाचार संपूर्ण विश्व में फैल रहा है। भाइयों और बहनों, जिस निश्चितता से प्रभु ने अधिक प्रचारकों को सेवा करने के लिए प्रेरित किया है, उतनी ही निश्चितता से वह अपने प्रचारकों को स्वीकार करने के लिए भले और ईमानदार लोगों के मनों को जागृत कर रहा है और दिलों को खोल रहा है। आप पहले से इन्हें जानते हैं या इन्हें जान जाएंगे। वे आपके परिवार में हैं और आपके आस पड़ोस में रहते हैं। वे गली में आपके सामने से गुजरते हैं, स्कूल में आपके साथ बैठते हैं और आपके ऑनलाइन जुड़ते हैं। आप भी इस खुले चमत्कार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आप कोर्ट पर प्रचारक बिल्ले के साथ पूरे समय के प्रचारक नहीं हैं, तो अपने दिलों पर लिख लो, जैसा पॉल कहता है, स्याही से नहीं बल्कि सजीव परमेश्वर की आत्मा से लिखा गया है। और वापस आए प्रचारकों, अपने पुराने प्रचारक बिल्लों को खोजो, इसे पहनो नहीं लेकिन ऐसे जगह रखो जहां तुम इसे देख सको। प्रभु अपने हाथों के औजार बनाने के लिए आपको इसकी जरूरत है। आपको इस चमत्कार में योगदान देना है। सुसमाचार को कैसे बांटना है के विषय में गिरजे का प्रत्येक धर्मी सदस्य सोचता है। कुछ समाचार को स्वाभाविक रूप से बांटते हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। कुछ संघर्ष करते हैं और सोचते हैं बेहतर कैसे करें। इस अपराध बोध पर विचार करते हुए हम कभी कभी महसूस करते हैं और जाकर मिलेगा। सुसमाचार बांटने की हमारी इच्छा इन सबों को घुटनों के बल करती है और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हमें प्रभु की जरूरत है। अध्यक्ष मॉन्सन ने कहा था कि हमें उन क्षेत्रों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जहां हमारा प्रभाव सीमित है और जहां सुसमाचार स्वतंत्र रूप से बांटने की अनुमति नहीं है। जब हम गंभीरता और एक होकर स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे महत्वपूर्ण द्वार खोलना जारी रखता है। हमें सुसमाचार बांटने और अपने स्वयं के अवसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रेरित पौलुस ने कहा, तुम सब जिसमें विश्वास रखते हो उसके विषय में यदि कोई जाकर पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहो उस आशा के लिए जो आप में है। आज के संसार की अर्थव्यवस्था और हलचल के कारण इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कम लोग अपने आराधना स्थलों को जा रहे हैं। यद्यपि बहुत से परमेश्वर के निकट आना और जीवन के उद्देश्य को अच्छी तरह समझना चाहते हैं, उनके पास अनुत्तरित प्रश्न है। बहुत से हृदय सच्चाई ग्रहण करने के लिए खुले हुए हैं, लेकिन जैसा कि भविष्यवक्ता एमस ने व्याख्या दी थी, वे लोग यहोवा के संदेश के लिए आगे बढ़ेंगे, पीछे हटेंगे किंतु वे उसे पाएंगे नहीं। आप उनके प्रश्नों को उत्तर देने में मदद कर सकते हो। अपनी प्रतिदिन की बातचीत में आप मसीह में उसके विश्वास को बढ़ा सकते हो। उद्धारकर्ता ने कहा था, अपने प्रकाश को ऊंचा करो जिससे कि वह तुम्हारे सारे संसार को प्रकाशित कर सके। देखो, मैं वही प्रकाश हूँ जिसे तुम पकड़े रहोगे। मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ, जब आप यह जानने के लिए प्रार्थना करते हो कि किससे बात करनी है, तो नाम और चेहरे आपके मन में आएंगे। आपको बोलने के लिए शब्द उसी क्षण दिए जाएंगे जब आपको इनकी जरूरत होगी। आपके लिए अवसर खोल दिए जाएंगे। विश्वास संदेह को दूर करेगा और प्रभु आपके स्वयं के चमत्कारों से आशीषित करेगा। उद्धारकर्ता ने हमें सिखाया कैसे सुसमाचार बांटना है। मुझे एंड्रयास की कहानी पसंद है जिसने पूछा था, गुरु तेरा निवास कहाँ है? यीशु जहाँ रहता था उस स्थान को बताकर जवाब दे सकता था। इसके स्थान पर उसने एंड्रयास से कहा, आओ और देखो। मैं सोचता हूँ कि उद्धारकर्ता कहना चाहता था, आओ और न केवल देखो मैं कहाँ रहता हूँ बल्कि कैसे रहता हूँ। आओ देखो मैं कौन हूँ, आओ और आत्मा को महसूस करो। उस दिन के विषय में हम कुछ नहीं जानते, लेकिन हम अवश्य जानते हैं कि जब एंड्रयास ने अपने भाई शमौन को पा लिया तो उसने घोषणा की थी, हमें मसीह मिल गया है। वे जो हमारी बातचीत में रुचि दिखाते हैं, हम उन्हें निमंत्रण देकर उद्धारकर्ता के उदाहरण आओ और देखो का अनुसरण कर सकते हैं। कुछ हमारे निमंत्रण को स्वीकार करेंगे और नहीं करेंगे। हम सब जानते हैं आओ और देखो का निमंत्रण स्वीकार करने से पहले किसी को बहुत बार निमंत्रण देना पड़ता है। आओ और हम उनके बारे में विचार करें कि कभी हमारे साथ थे लेकिन हम उनमें बहुत कम देखते हैं। एक फिर उन्हें वापस आने का और देखने का निमंत्रण दें। हम प्रत्येक व्यक्ति के चुनाव और समय का आदर करते हैं। प्रभु ने कहा था, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के लिए चुनाव करने दो। किसी व्यक्ति की रुचि में कमी हमारी मित्रता के बंधनों और प्रेम को कम करने के लिए जरूरत नहीं है। जब आप दूसरों को आओ और देखो का निमंत्रण देते हो, चाहे निमंत्रण स्वीकार किया जाए या नहीं, आप प्रभु के समर्थन को महसूस करेंगे और उस समर्थन के साथ अपने विश्वास को बांटने के लिए फिर से एक अतिरिक्त भरोसा पाएंगे। जो इंटरनेट और मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, उनके लिए दूसरों को आओ और देखो का निमंत्रण देने के लिए नए तरीके हैं। आओ हम अपने विश्वास को ऑनलाइन बांटना अपने प्रतिदिन के जीवन का हिस्सा बनाएं। LDS.org, Mormon.org, Facebook, Twitter, ये सब ऐसे अवसर उपलब्ध कराते हैं। सुसमाचार बांटने के लिए बोस्टन में युवा सदस्यों ने बहुत से ब्लॉग शुरू किए हैं। जो गिरजे में शामिल हुए उन्होंने अपने सुसमाचार शिक्षा पहले ऑनलाइन से आरंभ की और इसके बाद प्रचारकों के साथ चर्चा की। इस अनुभव ने युवाओं को व्यक्तिगत तौर पर सुसमाचार के बारे में बात करने का अधिक विश्वास पाने में मदद की। उनमें से एक युवा ने कहा है, यह प्रचारक कार्य नहीं है, यह प्रचारक आनंद है। हम इसमें एक साथ हैं। साथ ही वार्ड सदस्यों प्रचारकों के साथ हम योजना बनाएं और प्रार्थना करें और एक दूसरे की मदद करें। पूरे समय के प्रचारकों को अपने विचार और प्रार्थनाओं में याद करें। अपने परिवार और मित्रों के लिए उन पर भरोसा रखें। प्रभु पर भरोसा रखता है और उन्हें सिखाने और शिक्षित करने के लिए नियुक्त किया है जो उसकी खोज करते हैं। मोजाम्बिक मापुतो मिशन के अध्यक्ष पॉलो क्रेटली ने अनुभव को बांटा था। मोजाम्बिक में दंपतियों के लिए एक साथ रहना बिना विवाह के आम बात है, क्योंकि अफ्रीकी परंपरा के अनुसार विवाह के लिए महंगा दहेज चाहिए और अधिकांश संपत्ति दहेज का खर्च नहीं उठा सकते। सदस्यों और प्रचारकों ने मदद करने के लिए सोचा और प्रार्थना की। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर था कि वे यौन शुद्धता के नियम और विवाह और आनंद परिवार के महत्व पर जोर दें और दंपति का पश्चाताप करने और विधिवत विवाह में मदद करते समय वे उस सुख के विषय में सिखाएंगे जो केवल यीशु मसीह का अनुसरण करने से ही मिलता है। यह मोजाम्बिक में दो अलग शहरों के दंपति की फोटो है। शुक्रवार को विवाह हुआ था, उन्होंने अपने बड़े बच्चों के साथ शनिवार को बपतिस्मा लिया था। मित्रों परिवारों को आने और देखने का निमंत्रण दिया गया था और सैकड़ों आए और देखा था। बपतिस्मे के साथ एक बहन ने कहा था, हमें चुनाव करना था कि अपने पूर्वजों की परंपराओं का अनुसरण करें या यीशु मसीह का अनुसरण करें। हमने मसीह का अनुसरण करना चुना। हो सकता है आप मोजाम्बिक में ना रहते हों, लेकिन अपने मार्ग में, अपनी स्वयं की संस्कृति में आप यीशु मसीह के पुनर्स्थापित सुसमाचार को बांट सकते हैं। स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करें, यह उसका पवित्र काम है। आपको कार्य करने का मार्गदर्शन मिलेगा, वह द्वार खोलेगा, मार्ग के रोड़ों को हटाएगा और बाधाओं को पार करने में आपकी मदद करेगा। मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि यीशु मसीह हमारे प्रभु उद्धारकर्ता को उसके राज्य का निर्माण करने में हमारी मदद के लिए स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया जाएगा। मैं गवाही देता हूँ कि प्रभु की आवाज पृथ्वी के अंतिम छोर तक पहुँचेगी, ताकि जो सुनना चाहेंगे इसे सुनेंगे। यह एक चमत्कार है यीशु मसीह के नाम में। आमीन।